नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है हम दुखियारे जन्म के, जिसे लिखा है मालती जोशी ने। तो चलिए कहानी शुरू करें। हम दुखियारे जन्म के। बुआ जी, सोम्या ने धीरे से आवाज दी, क्या है बेटे? मेरी छोटी बहन से मिलना चाहेंगी। तुम्हारी बहन से? क्यों नहीं, वह आई हुई है क्या? नहीं, स्काइप पे। स्काइप पे? मेरी समझ में कुछ नहीं आया। अरे, वो कंप्यूटर पर फोटो दिखती है ना, वो। भाभी ने मुंह पर से चादर हटाते हुए कहा। मम्मी जी, आप चलेंगी? सोम्या ने सहम कर पूछा। सास की नींद में खलल डालने का उसका अपराध बोध चेहरे पर झलक रहा था। नहीं, तुम सुनीता को ले जाओ, कहते हुए भाभी ने फिर चादर सिर पर ओढ़ ली। सुनीता के पीछे पीछे चलकर मैंने बड़े संकोच के साथ उसके बेडरूम में प्रवेश किया। बस अभी 2:30 बजे आएगी, सोम्या ने कहा। तुम्हारी बहन तो अमेरिका में है ना? वहाँ तो अभी रात होगी। हाँ, पर दिन में वे लोग ऑफिस में होते हैं ना, सुबह शाम का टाइम सूट करता है, पर इत्मीनान से बात नहीं हो पाती। आज मेरा ऑफ था ना, इसलिए अभी बुलाया है। मम्मी भी आजकल वहीं है ना, दिव्या की डिलीवरी के लिए गई हुई है। ठीक 2:30 बजे उसने कंप्यूटर ऑन किया। थोड़ी देर में स्क्रीन पर उसकी बहन, माँ और छोटी बच्ची दिखाई दी। मम्मी, ये हमारी बुआ जी हैं, नासिक से आई हैं। उसकी माँ ने नमस्ते की, मैंने भी की, फिर बहन से हाय हेलो की, बच्चे को प्यार दिया। वह इससे ज़्यादा कुछ ना कर सकी। यह सब कुछ मेरे लिए इतना नया था कि खुलकर बात ना कर सकी। कुछ देर बाद मैंने कहा, सोम्या, मैं चलती हूँ, तुम लोग आराम से बातें करो, कहो तो छोटू को ले जाओ। नहीं, वह भी गुड़िया से बात करेगा। हो गई बात? कमरे में पांव देते ही भाभी ने पूछा। बात क्या करनी थी, बस दुआ सलाम हो गई, कुशल क्षेम पूछ लिया बस। ज़्यादा बोलने की मुझे प्रैक्टिस थोड़ी ही है, उसने इतने प्यार से बुलाया इसलिए चली गई। पर भाभी, सोम्या की माँ कितनी यंग लगती है ना, लगता ही नहीं कि दो दो बेटियाँ ब्याह चुकी है। सोम्या की शादी में देखा था, वैसी की वैसी हैं। यंग क्यों नहीं लगेंगी, सारी जिम्मेदारियों से फुर्सत जो हो गई है। दोनों बेटियाँ ब्याह गई, वह भी आराम आराम से। आराम कहाँ भाभी, जिम्मेदारियाँ कभी ख़त्म होती हैं क्या? अब बेटी की डिलीवरी के लिए इतनी दूर जाना पड़ा कि नहीं, तो उनकी गांठ से क्या गया। दोनों और का टिकट दामाद ने बनवाया, अब ससुर का भी बनवाएगा, वे भी 2 महीने तफरीब कर आएंगे। बात सिर्फ पैसे की नहीं है, 6 महीने घर से दूर रहना हंसी खेल नहीं है, वह भी पति को छोड़कर। और वहाँ कोई नौकर चाकर थोड़े ही होते हैं, सब काम हाथ से करना पड़ता है। बच्चे को भी संभालो और काम भी करो, मजाक नहीं है। वहाँ हर काम मशीन से होता है। पर मशीन चलानी तो पड़ती है, उत्तर में भाभी ने मुंह बिचका लिया। उसी समय सोम्या चाय के लिए पूछने आई, उसे देखकर भाभी एकदम सकपक आ गई। इन्हें प्रकृति करने के लिए मैंने सोम्या से कहा, मैं अभी भाभी से कह रही थी कि तुम्हारी माँ कितनी यंग लगती है, लगता ही नहीं कि दोनों बेटियाँ ब्याह चुकी हैं। बुआ जी, आप अगर मेरी मौसी को देख लेंगी ना, तो कहने को तो मम्मी से बड़ी बहन है, पर हम लोगों की बड़ी बहन लगती है। लगेंगी क्यों नहीं, उसके शरीर ने झेला ही क्या है, ना बाल ना बच्चा। बच्चे होते हैं तो शरीर छिजता है, बच्चे पालना कोई हंसी खेल नहीं है। स्वाभाविक ही था, सोम्या को यह टिप्पणी अच्छी नहीं लगी, वह चुपचाप चाय बनाने चली गई। भाभी का कहना जारी था, दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर हैं, ढेर सारा कमाते हैं, मस्त रहते हैं। ऐसा नहीं है भाभी, निसंतान होना अपने आप में एक बड़ा दुख है, ऐसे में कोई मस्त कैसे रह सकता है। अरे, ये सब पुरानी बातें हो गई हैं, आजकल बच्चे होना ना होना सब बराबर है, किसी के बच्चे पास नहीं रहते, सब विदेश भाग जाते हैं, देश में भी नहीं रहते तो अलग ही रस्ती बसा लेते हैं, माँ बाप को कोई नहीं पूछता। कम से कम तुम तो ऐसा मत कहो भाभी, तुम्हारा इकलौता होनहार बेटा देश तो क्या शहर छोड़ कर भी नहीं गया, बीबी बच्चे के साथ तुम्हारे पास तुम्हारे घर में ही तो रह रहा है, क्या पता कितने दिन रहेगा, भाभी ने उस सांस भर कर कहा। वह छुटकी सब जब से ब्याह कर विदेश गई है, इन लोगों को बराबर बुला रही है, वह तो शशांक के आगे बस नहीं चलता, नहीं तो सौम्या तो कब से तैयार बैठी है। शशांक भी उसकी जिद को कब तक टाल पाएगा, देखते हैं। मैं तो परेशान हो गई, कोई इतनी नकारात्मक सोच रख सकता है। भाभी इसकी जिंदा मिसाल होती जा रही थी। दूसरे दिन दफ्तर जाते हुए सौम्या ने किशुक को भाभी की गोद में दे दिया। माँ जब तक नजर आती रही बच्चा खिन खिन करता रहा, बाद में चुपचाप दादी की गोद में दुबक गया। मैंने कहा, भाभी इन लोगों को जब एक आया रख लेनी चाहिए, आपकी उम्र थोड़ी है बच्चे पालने की। भाभी बोली, आया रख लेंगी तो सास का क्या अचार डालेंगी। सुनकर मैं तो दंग ही रह गई। मुझे सौम्या से यह आशा नहीं थी, मैं तो उसे बहुत सुलझी हुई लड़की समझती थी, पर क्या पता मनुष्य का असली स्वभाव तो साथ रहने पर ही समझ में आता है। एक मन हुआ कि उसे अकेले में थोड़ा समझाऊं, पर दूसरे ही क्षण यह विचार त्याग दिया। चार दिन के लिए आई हूँ, क्यों बुरी बनूं। पर शाम को जब भाई साहब दफ्तर से लौटे और बच्चे को उनकी गोद में देकर भाभी चाय बनाने चली गई, तो मैंने कहा, भाई साहब दोनों इतना कमाते हैं, बच्चे के लिए एक आया क्यों नहीं रखते। भाभी की उम्र है क्या बच्चे पालने की। तुम्हें क्या लगता है, इस घर में आया कभी रखी नहीं गई। कम से कम आधा दर्जन तो हो चुकी, कभी चोरी कभी मुँह चोरी का आरोप लगाकर सबको भगा दिया। बात सच हो या झूठ, हमें तो घर के व्यक्ति का ही पक्ष लेना पड़ता है ना। बार बार आया बदलने से बच्चा उनसे हिल नहीं पाता, दादी से चिपका रहता है, फिर उसे कुछ और काम बताए जाते हैं, कुछ तो लिहाज के मारे ये बिगाड़ कर देती हैं, कुछ साफ मुकर जाती हैं, फिर उनकी छुट्टी। चाय आ गई और भाई साहब ने बात बदल दी, बोले, मैं पिछले वर्ष कैलाश मानसरोवर गया था, वहाँ की बड़ी सुंदर तस्वीरें हैं, कमरे में आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। भाई साहब शायद भूल गए थे कि वे तस्वीरें मुझे भेज चुके हैं, या हो सकता है इसी बहाने में मुझे कमरे में बुलाना चाहते हो। मैंने बहस नहीं की और चुपचाप उनके पीछे चल दी। भाभी छोटू को लेकर बगीचे में चली गई। कमरे में आते ही भाई साहब बोले, सुनीता तुम आई हो तो मैं चाहता हूँ कि अपनी भाभी को कुछ समझाओ, बड़ा अजीब स्वभाव होता जा रहा है। अभी तुम्हें मैंने आया की बात बताई, वे घर में मिसरानी को महरी को किसी को भी टिकने नहीं देती, इतनी चकचक मचाती हैं कि भाग खड़ी होती हैं। आप कुछ कहते क्यों नहीं। मैं एक दो बार मैंने आया का पक्ष लिया तो उन्होंने मेरे चरित्र पर ही लाचन लगा दिया। अब तुम ही बताओ, इस उम्र में मैं बेटे बहू के सामने यह सब सुनना अच्छा लगता है। तब से मैंने बोलना ही बंद कर दिया। मैं चुप रही, कहती भी क्या। वही आगे बोले, तंग आकर शशांक अब रसोई के लिए एक महाराज ही ले आया, दबंग आदमी है, अपने काम से काम रखता है। तुम्हारी भाभी मन ही मन उससे डरती है, ज़्यादा नहीं बोलती। वैसे भी शशांक ने अल्टीमेटम दे रखा है कि अब अगर इसे हटाया तो हम तीनों होटल में खाएंगे, आप अपनी पसंद का बनाकर खाती रहना। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि भाभी थोड़ी साइकिक हो गई है, शायद शशांक के विदेश जाने का डर उनके मन में बैठ गया। वह तो अभी कहीं नहीं जा रहा, पर अगर इनका यही दस्तूर रहा तो तंग आकर एक दिन जरूर चला जाएगा, और मैं उसे दोष भी नहीं दूंगा। काम वाली बाइयों के बारे में भाई साहब जो कह रहे थे उसका प्रमाण मुझे दो तीन दिन बाद ही मिल गया। हम दोपहर में अपने अपने बिस्तर पर लेटी बतिया रही थी कि महरी दबदबाते हुए कमरे में दाखिल हुई। अम्मा जी ये रोज रोज क्या तमाशा है। अरे धीरे बोल, बच्चा जाग जाएगा। पहले आप मेरी बात का जवाब दो, परसों साबुदानी के नीचे 10 का नोट था, आपने कहा रखकर भूल गई थी, आज छोटू की जेब में से ये 5 का नोट निकला है, किसी ने दिया होगा। 5 का नोट। अम्मा जी हमें बेवकूफ़ समझती हो क्या, 5 का नोट आजकल जैसे गरीब गुरबा भी लेते देते नहीं, कोई आपके बच्चे को 5 रुपये देगा। तू कहना क्या चाहती है। यही कि इस तरह हमें परचना बंद करो। अरे पिछले जन्म में ऐसे ही काम किए होंगे जो आज आप लोग उनके जूठे बर्तन धो रहे हैं, इस जन्म में भी वही करेंगे तो हमारी क्या गति होगी। अपने काम के प्रति तृष्णा और व्यवस्था उसके शब्दों में झलक रही थी। अम्मा जी आपको रखना हो तो रखो, नहीं तो मना कर दो, पर चोरी चकारी का इल्जाम लगाकर भगाओगी तो ठीक नहीं रहेगा। हाँ भाभी कुछ कहने को हुई तो मैंने उन्हें चुप करा दिया और महरी से कहा, ठीक है भाई जाओ अपना काम करो, वह बड़बड़ाती हुई चली गई। जब वह आवाज़ की इज्जत से बाहर हो गई तो मैंने भाभी से कहा, भाभी क्यों इन छोटे लोगों के मुंह लगती हो, घर की बड़ी हो, बड़ों की तरह रहो। भाभी ने तुरंत आंसू से पल्लू पल्लू छुड़ाया और करवट बदल ली। फिर जैसे अपने आप से बोली, मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं, तभी तो नौकर चाकर तक आँख दिखाते हैं। मैं तो सोच में पड़ गई, भाभी ये सब किससे सुना रही थी मुझे, यहाँ की यह बस एक जनरल स्टेटमेंट था। कुछ भी हो, मैं पूरा दिन बहुत ही बेचैन रही। मुझे डर लग रहा था कि आज रात जरूर महाभारत होगा, कल को मेहंदी की छुट्टी कर दी जाएगी, फिर नए सिरे से काम वाले की खोज शुरू हो जाएगी। और वैसा कुछ नहीं हुआ, शिकायत करना तो दूर, भाभी ने इस बात का जिक्र नहीं किया। मुझे सचमुच आश्चर्य हो रहा था। मैंने सुबह भाई साहब को यह किस्सा सुनाया तो बोले, तुम गवाह के रूप में वहाँ मौजूद थी ना, वो उल्टे सीधे इल्ज़ाम कैसे लगा सकती थी, इसीलिए चुप बनी रही। कुछ देर वे भी चुप रही, फिर एकाएक बोले, आइडिया। क्या, तुम्हारे यहाँ होने का कुछ फ़ायदा तो उठा लें। कैसे, एक आया ढूंढ लाते हैं, तुम्हारी देख रेख में उसकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी और परीक्षा भी। मुझे उम्मीद है तुम भाभी और आया दोनों को फ्रंट ठीक से संभाल लोगी। आया को अच्छे से ब्रीफ कर देना, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके पास छोड़ना ताकि वह हिल जाए। एक बार ठीक से सेटल हो जाएगी तो शायद थोड़े दिन चल पाएगी। नहीं तो मुझे अपनी अच्छी खासी वकालत छोड़कर अंपायरिंग करने के लिए घर बैठना पड़ेगा। सोम्या को भी ये आइडिया बहुत पसंद आ गया। बोली, बुआ जी ऐसा हो जाएगा तो सचमुच मैं एकदम निश्चिंत हो जाऊंगी। आप नहीं जानती, जितनी देर बाहर रहती हूँ मन यही रखा रहता है, इसीलिए हमने बच्चा देर से प्लान किया कि एक बार ठीक से सेटल हो जाए फिर सोचेंगे, पर अब लगता है गलती हो गई। अरे ऐसे नहीं कहते बेटे, बच्चे के बिना गृहस्थी कोई गृहस्थी है? अगले साल तो इसे प्ले स्कूल में भेजना ही है, हो सका तो डे केयर में भी रख दूंगी, पर बच्चा कम से कम 3 साल तो घर में रहे। पर मम्मी जी, सी इज बिकमिंग इम्पॉसिबल। दरअसल भाभी इस समय बड़ी विचित्र मनोस्थिति से गुजर रही थी। उन्हें लग रहा था कि गृहस्थी की बागडोर उनके हाथ से छूटी जा रही है और वे किसी तरह उसे थामे रखना चाहती थी। किसी न किसी बहाने वे अपना अस्तित्व महसूस करवाना चाहती थी। उन्हें यह भी डर है कि किसी दिन तुम लोग विदेश चले जाओगे, इसलिए शायद बच्चे को अपने से अलग नहीं करना चाहती। इसका उपाय क्या है बुआ जी? कुछ नहीं, उनके ईगो को सहलाते रहो बस। दूसरे दिन खाने की मेज पर सोम्या ने घोषणा की, कल एजेंसी से एक नई आया आ रही है, ट्रेंड है, बाकी आप देख लेना। बुआ जी आप यहाँ हैं तब तक उसे ठीक से जांच परख लें, विश्वसनीय होना चाहिए। क्या होता है कि अनजान औरत को घर में छोड़कर मम्मी टॉयलेट भी नहीं जा सकती। पर मैं पूछती हूँ आया की जरूरत ही क्या है, बच्चा तुम्हारा पल तो रहा है ना, या मुझ पर विश्वास नहीं? ये जो तुम्हारी बगल में बैठा है ना, इसे भी मैंने ही बड़ा किया है और अपने दम पर किया है, कोई नौकर आया नहीं थे मेरे पास। तब की बात और थी मम्मी जी, एक तो आप हाउसवाइफ थी, दूसरे आपकी उम्र भी कम थी। अब इस उम्र में, भाभी सोम्या ठीक कहती है, अपने बच्चे पालना सरल है क्योंकि तब हम में दम कम होता है, पर बच्चों के बच्चे पालने में सांस फूल जाती है। सब कामों के लिए नौकर रख लो और हमें मिट्टी के लोधे की राय कोने में पटक दो। कोने में आप क्यों बैठेंगी, आप तो सुपरवाइजर ही करेंगी, घर की मालकिन है आप, लोग बाग ठीक से काम करते हैं नहीं यह तो आपको ही देखना है। हमारी औकात ही क्या है? ऐसा मत कहिए मम्मी जी, आप ही के भरोसे तो मैं निश्चिंत होकर काम पर जाती हूँ। मैं अपने साथ वालियों को देखती हूँ ना, कैसी गिरती पड़ती काम पर आती हैं, किसी का बच्चा झूला घर में है तो किसी का डे केयर में, स्कूल से सीधे वहीं पहुँचना है, किसी के बच्चे पड़ोस में चाबी लेकर अपने से दरवाज़ा खोलते हैं, अपने से खाना खाते हैं। सबको मुझसे इतनी ईर्ष्या होती है, कहती हैं कितनी भाग्यवान है तू, न घर की फिक्र न बच्चे की, हमें देख 24 घंटे भागम भाग मची रहती है, सांस लेने की फुर्सत नहीं होती। उसकी बातों से भाभी का चेहरा थोड़ा खिला खिला लगा। फिर शशांक ने भी 2-4 मजेदार बातें की तो वातावरण तनाव मुक्त हो गया। मैंने मन में कहा, प्रभु यह माहौल ऐसा ही बनाए रखना। खाना खाने के बाद भाई साहब और भाभी पान खाने चले गए, मुझसे भी कहा था, पर टीवी का बहाना करके मैं घर पर बनी रही। सोचा घर में तो इन दोनों को एकांत मिलता नहीं, बाहर निकलेंगे तो थोड़ा एक दूसरे से कह सुन लेंगे। घूम कर लौटी तो मेरा पान पकड़ाते हुए भाभी फुसफुसा कर बोली, बहू रानी की बातें सुनी, तुम्हारी कितनी तारीफ करती थी, इस लल्लो चप्पो का मतलब समझती हो ना, अभी बच्चा छोटा है ना, उसे एकदम नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, इसीलिए मेरी खुशामद हो रही है, मैं ना रहूं तो नौकरी चाकरी सब धरी रह जाएगी, एक दिन की भी गाड़ी नहीं चल पाएगी। वह बेचारी भी तो यही कह रही थी। ऐसी बेचारी भी नहीं है वो, भाभी ने तुनक कर कहा, जितनी जमीन के ऊपर है उतनी ही अंदर है। अब किसी के मन में क्या है यह कौन जानता है। भाभी बोल चाल में व्यवहार में सौम्य है, शालीन है, इसलिए मुझे तो तुम्हारी बहुत बहुत प्यारी लगती है। उसके मीठे बोल पर ही तो सब रिश्ते हैं, भाभी ने कसैले स्वर में कहा। तुम्हारे भाई साहब को तो ऐसा पटा लिया है कि क्या बताऊं, उसके खिलाफ वे एक शब्द नहीं सुन सकते। मैं चुप हो गई। बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी, पर मन ही मन सोच में पड़ गई थी कि भाभी को यह कैसा मानसिक रोग लग गया है, दिन भर बैठे बैठे अपने काल्पनिक दुखों को सहलाती रहती हैं, निरंतर एक शिकायती मुद्रा में जीवन के सहज और सरल सुखों को नकार रही हैं। इस विकृति का अंत कहाँ होगा, कैसा होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी। मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।